ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 जून 2026 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता। स्वर्ण पथ, यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उत्तर दैय ध्यान, भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थवाद की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हे फाटकों को अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन की दीवारों ऊंची हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन की दीवारों ऊंची हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। देखो, प्रभु यहोवा समर्थ दिखा रहा है, वो अपने बाजू से प्रभुता करेगा। निर्गमन। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समंदर में डाल दिया है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समंदर में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समंदर में डूब गए। और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वो भूसे के नियन भस्म हो जाते हैं। वो तेरे नैनों की सांस से जल एकत्र हो गया है, धाराएं ढेर के नियन थम गईं। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समंदर ने उनको ढांप लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। तब मूसा इसराइलियों को लाल समंदर से आगे ले गया। निर्गमन। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। निर्गमन। फिर इसराइलियों की सारी मंडली नसीन नामी जंगल से निकल गई और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रेफदीन में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पीने की प्यास लगी, तब वो ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पथरावा करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी से मारा था اسے اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کے آگے بڑھ چل۔ دیکھ، میں تیرے آگے چل کر حوریب پہاڑ کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا جس سے یہ لوگ پئیں۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے ورودھ لوگوں کے دیکھتے ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے اس ستھان کا نام مسہ اور مریبا رکھا، کیونکہ اسرائیلیوں نے وہاں واد وواد کیا تھا اور یہوہ کی پریکشا یہ کہہ کر کی کہ کیا یہوہ ہمارے بیچ ہے یا نہیں۔ نرگمن، تو مجھے چھوڑ دوسروں کو ایشور کر کے نہ ماننا۔ لوکا، پھر یشو آتما کی سمرتھ سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ متی، اور سارے سوریا میں اس کا یش پھیل گیا، اور لوگ سب بیماروں کو جو نئے نئے پرکار کی بیماریوں اور دکھوں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن میں دشت آتمائیں تھیں اور مرگی والوں اور جھولے کے مارے ہوئوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو ٹھیک کیا۔ متی، اور دیکھو ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اسے پرنام کیا اور کہا، ہے پربھو، یدھی تو چاہے تو مجھے شدھ کر سکتا ہے۔ یشو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو شدھ ہو جا، اور وہ ترنت کوڑ سے شدھ ہو گیا۔ یشو نے ان سے کہا، دیکھو کسی سے نہ کہنا، پرنتو جا کر اپنے آپ کو یاجک کو دکھلا، اور جو چڑھاوا موسیٰ نے ٹھہرایا ہے اسے چڑھا، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ متی، چھ دن کے بعد یشو نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایکانت میں کسی اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور ان کے سامنے اس کا روپ انتر ہوا، اور اس کا منہ سوریہ کے نین چمکا، اور اس کا وستر جیوتی کے نین اجلا ہو گیا، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ اس پر پترس نے یشو سے کہا، ہے پربھو، ہمارا یہاں رہنا ہی اچھا ہے، اچھا ہو تو یہاں تین منڈیپ بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک اجلے بادل نے انہیں چھا لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے یہ شبد نکلا، یہ میرا پریے پتر ہے جس سے میں پرسن ہوں، اس کی سنو۔ چیلے یہ سن کر منہ کے بل گر گئے اور اتینت ڈر گئے۔ یشو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ تب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر یشو کو چھوڑ اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہا تھا تب یشو نے انہیں یہ آگیا دی کہ جب تک منوشے کا پتر مرے ہوئوں میں سے نہ جی اٹھے، تب تک جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک منوشے اس کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، ہے پربھو، میرے پتر پر دیا کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اور بار بار آگ میں اور بار بار پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے چیلوں کے پاس لایا تھا پر وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ یشو نے اتر دیا کہ ہے اوشواسی اور ہٹیلے لوگو، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری سہوں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ تب یشو نے اسے جھڑکا اور دشت آتما اس میں سے نکلی، اور لڑکا اسی گھڑی ٹھیک ہو گیا۔ تب چیلوں نے ایکانت میں یشو کے پاس آ کر کہا، ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے وشواس کی گھاٹی کے کارن، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یدھی تمہارا وشواس رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، تو وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے انہونی نہ ہوگی۔ یوحنا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر وشواس رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، ورن اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں پتا کے پاس جاتا ہوں۔ یوحنا، پتا مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य रचनात्मक सिद्धांत जीवन सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दिशाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मन में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं, और ये उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मूसा ने यहोवा की 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा ये घोषित की, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सृष्टि के बारे में इंसानों के मनगढ़ंत सिद्धांत, जिन्हें पुराने समय में उच्च आलोचना माना जाता था, रोम और यूनान के पढ़े लिखे विद्वानों से निकले थे, लेकिन वो दिव्य मन से सृष्टि के बारे में सही विचार का कोई आधार नहीं देते थे। इंसान ने अपनी आंखों से वादा किया है कि वो इंसानी सोच से ईश्वर को छोटा दिखाएगा। भौतिक समझ के साथ मिलकर इंसान सभी चीजों के बारे में सीमित दृष्टिकोण रखते हैं। किसी भी इंसान को ये नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर साकार है या भौतिक। पवित्र शास्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या सही माने में पुराने नियम के आरंभ से शुरू होती है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वचन की आध्यात्मिक आयत अपनी आरंभिक अभिव्यक्तियों में अक्सर तत्कालिक संदर्भ में इतना दब जाता है कि उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जबकि नए नियम की कहानियां ज्यादा साफ हैं और दिल के करीब हैं। इंसानी जिंदगी की गरीबी दिखाते हुए, लेकिन इंसानी जरूरतों और दुखों की भरपाई आध्यात्मिक फायदे से करते हुए यीशु उन्हें रोशन करते हैं। सत्य का अवतर, आश्चर्य और महिमा का वो विस्तर जिसे फरिश्ते सिर्फ फुसफुसा सकते थे और जिसे ईश्वर ने प्रकाश और तालमेल से दिखाया, हमेशा मौजूद प्रेम के साथ मेल खाता है। क्रिश्चियन धर्म, जैसा कि यीशु ने सिखाया था, ना तो कोई पंथ था, ना ही समारोहों की एक प्रणाली, ना ही अनुष्ठान करने वाले यहोवा का कोई विशेष उपहार, परंतु ये दिव्य प्रेम का दर्शन है जो त्रुटि को दूर करता था और बीमारों को ठीक करता था, ना केवल मसीह यीशु के नाम पर बल्कि सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। ये कई लोगों द्वारा माना जाता है कि एक निश्चित मजिस्ट्रेट जो यीशु के समय में रहता था, उसने ये कठान दिया, उसकी फटकार भयभीत है। हमारे मालिक की कड़वी भाषा इस विवरण की पुष्टि करती है। गलती के लिए उसने जो एकमात्र सजा दी थी वो ये थी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु का तीर स्कार तेज और गहन था। उसका मजबूत प्रमाण उसके मजबूत शब्दों में मिलता है, इस तरह की जुबान बोलने की आवश्यकता को दिखाते हुए, जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बीमार और पापी को ठीक किया। त्रुटि का निवारण उसके झूठे दावों की भावतिक भावना से वंचित करता है। मिस्र में यमन ही था जिसने इसराइलियों को विपत्तियों पर विश्वास करने से बचाया था। जंगल में चट्टान से धाराएं बहती थीं और मीना आसमान से गिरती थी। राष्ट्रीय समृद्धि में चमत्कारों ने इब्रानियों की सफलताओं में भाग लिया, लेकिन जब वो सच्चे विचार से विदा हुए तो उनका विध्वंस शुरू हो गया। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि भगवान अच्छाई एकमात्र मन है, और ये के अनंत मन के विपरीत जिसे शैतान या बुराई कहा जाता है, मन नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। एक मन हो सकता है लेकिन एक भगवान, और यदि मनुष्यों ने किसी अन्य मन का दावा किया और किसी अन्य को स्वीकार नहीं किया तो पाप अज्ञात होगा। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है जो इसका निर्माता है। मन ही सबकी आत्मा है। मन जीवन, सत्य और प्रेम है जो सभी को नियंत्रित करता है। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। जब मसीह ने गूंगी आत्मा को बाहर निकाला, जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। आज इसराइल के पवित्र को सीमित करके और ये पूछकर यहूदियों को अपराध को दोहराने का खतरा है, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकता? भावतिक प्रतिरोध पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करने का दिव्य अधिकार है। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता है। वर्तमान में ये तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। भजनहार ने गाया, हे समंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा बहा, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के नियन, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछली, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। ये चमत्कार किसी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है। भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना। आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के युगे है। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया, वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन ईश्वर का विरोध करता है और इसे दूर किया जाना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस घोषित करता है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है, वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण प्राणी समान जैसे पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से और तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपार्जन और सत्य की अग्रणी को पालन करें। जीवन वो चिरस्थाई मैं हूं है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। चूंकि लाल समंदर के माध्यम से इसराइल के लोगों की विजयी रूप से निर्देशित किया गया था, इसलिए मानव भय के अंधेरे और बहते ज्वार, क्योंकि वो जंगल से होकर निकले थे जो मानवीय आशाओं के महान रेगिस्तान से थके हुए थे और वादा की गई आनंद की आशा करते थे, इसलिए आध्यात्मिक विचार अस्तित्व की भावतिक भावना से लेकर आत्मा तक, भगवान से प्रेम करने वाले उनके तैयार की गई गौरव तक, आत्मा से उनके मार्ग में सभी सही इच्छाओं का मार्गदर्शन करेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।